आज हम जिस उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है। हम बात कर रहे हैं जेम्स मैकब्राइड के मशहूर उपन्यास द हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर के।
मैकब्राइड को लोग यूं ही अमेरिकी साहित्य का संगीतकार नहीं कहते, उनके लिखने में एक लय है,
एक संगीत है जो सीधे दिल तक पहुंचता है,
और वो संगीत शायद उनके अपने जीवन से आता है। मतलब एक अश्वेत पिता और एक श्वेत यहूदी माँ की संतान होना।
हाँ, उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को बहुत करीब से जिया है,
और वही समझ वही सहानुभूति उनके हर काम में दिखती है, चाहे वो द कलर ऑफ वाटर हो या फिर
द गुड लॉर्ड बर्ड, जिसे नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था।
बिल्कुल, और द हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर जो 2023 में आया, वो जैसे उनकी कला का एक निचोड़ है।
ये हमें 1920 और 30 के दशक के अमेरिका ले जाता है, पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर पॉट्सटाउन।
पर कहानी शहर में नहीं है।
नहीं, कहानी है उसके एक हाशिए पर बसे इलाके में जिसका नाम है चिकन हिल।
चिकन हिल, नाम से ही लगता है कोई भूली बिसरी सी जगह।
हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ वो लोग रहते थे जिन्हें समाज ने एक तरह से अलग थलग कर दिया था।
यूरोप से आए यहूदी अप्रवासी
और दक्षिण से आए अफ्रीकी अमेरिकी, ये दोनों समुदाय एक दूसरे के पड़ोसी थे।
और कहानी की शुरुआत भी तो एक ऐसे रहस्य से होती है जो आपको मतलब एकदम से जकड़ लेता है।
हाँ बिल्कुल,
साल है 1972, यानी कहानी के मुख्य समय से 40 साल बाद।
अच्छा,
एक पुराने कुएं की खुदाई हो रही है और उसमें से एक इंसानी कंकाल निकलता है।
ये तो किसी भी रहस्यमय कहानी के लिए एक बहुत ही दमदार शुरुआत है।
पर रुकिए, इसमें एक और पेंच है।
क्या?
उस कंकाल के साथ एक मेजूजा भी मिलती है।
मेजूजा मतलब वो छोटी डिबिया जिसमें यहूदी प्रार्थना होती है।
जी, जिसे यहूदी अपने दरवाजे पर लगाते हैं। अब सवाल यह है कि एक ईसाई इलाके के कुएं में
एक कंकाल के साथ यहूदी धर्म से जुड़ी ये चीज क्या कर रही है?
वो कंकाल किसका है? उसे वहां किसने छिपाया? ये सवाल हमें सीधे 1930 के दशक के चिकन हिल में ले जाते हैं।
तो चलिए फिर उस समय में वापस चलते हैं। मुझे लगता है इस कहानी का जो दिल है वो उसके किरदारों में है।
बिल्कुल।
कौन है वो लोग जो चिकन हिल को चिकन हिल बनाते हैं?
सबसे पहले तो हैं चोना लूडलो। अगर इस उपन्यास की कोई आत्मा है तो वो चोना है।
अच्छा।
बचपन में पोलियो हुआ था तो वो ठीक से चल नहीं पाती थी, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका दिल, वो सबसे ज्यादा मजबूत था।
और वो हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर चलाती थी।
हाँ, अपने पति मोशे के साथ। और वो दुकान ही उस पूरे मोहल्ले का केंद्र थी।
हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी, ये नाम, ये सिर्फ एक दुकान का नाम नहीं लगता,
इसका मतलब बहुत गहरा है। चोना के लिए वो दुकान सामान बेचने की जगह थी ही नहीं।
तो क्या थी?
वो एक पनाहा थी, एक ऐसी जगह जहां आपके रंग या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वो जानती थी कि उनके ग्राहक शायद कभी उधार नहीं चुका पाएंगे।
हाँ, पर उनका मानना था कि गरीबी में इंसानियत के नियम व्यापार के नियमों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं।
यानी वो मुनाफे की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ये तो उनके पति मोशे के लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा।
बहुत मुश्किल, और यही उन दोनों के बीच एक प्यारा सा तनाव भी है। मोशे एक थिएटर चलाते थे,
शहर का अकेला थिएटर जहां अश्वेत लोगों का भी स्वागत था।
जी, वो अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करते थे, पर उनकी इस दरियादिली से हमेशा परेशान रहते थे।
दुकान कभी फायदे में नहीं चलती होगी।
कभी नहीं, पर वो चोना की खुशी के लिए उसे चलने देते थे।
तो एक तरफ चोना का आदर्शवाद है और दूसरी तरफ मोशे का यथार्थवाद। और कौन है इस दुनिया में?
फिर आते हैं नेट टिम्बलन। वो चिकन हिल के अश्वेत समुदाय के एक शांत, बहुत इज्जतदार और समझदार बुजुर्ग हैं।
अच्छा।
देखने में तो वो एक मामूली चौकीदार लगते हैं, पर असल में वो पूरे समुदाय की आंख और कान हैं।
मतलब कम बोलते हैं पर नजर सब पर रखते हैं।
बिल्कुल, वो समुदाय के रक्षक हैं।
और वो एक बच्चा भी तो है जिसकी वजह से ये सारी कहानी घूमती है ना?
हाँ, डोडो, एक 12 साल का अश्वेत लड़का जो सुन नहीं सकता,
अनाथ है।
हाँ, और उसका चाचा फैटी उसकी देखभाल करता है। डोडो की मासूमियत ही वो चिंगारी बनती है जो चिकन हिल में हलचल मचा देती है
और हर किसी को अपने जमीर का सामना करने पर मजबूर कर लेती है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
तो यहीं से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता होगा, जब इस छोटी सी दुनिया का टकराव बाहर की बड़ी क्रूर दुनिया से होता है।
जी, कहानी में भूचाल आता है 1936 में। एक दिन डोडो के चाचा फैटी की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है
और डोडो अकेला रह जाता है।
बिल्कुल अकेला, बेसहारा। और क्योंकि उसका कोई और रिश्तेदार नहीं होता, वो राज्य की निगरानी में आ जाता है।
और राज्य का मतलब है वो व्यवस्था जो चिकन हिल जैसे इलाकों को मतलब देखना भी पसंद नहीं करती।
और उस व्यवस्था का चेहरा बन के आता है कहानी का खलनायक डॉक्टर रॉबर्ट्स।
शहर का एक बड़ा डॉक्टर, बाहर से बहुत सम्मानित
पर अंदर से वो कुक्लक्स क्लैन का सदस्य है, नस्लवादी विचारों से भरा हुआ।
तो डॉक्टर रॉबर्ट सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है, वो उस पूरी संस्थागत नफरत का प्रतीक है।
हाँ, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है डोडो के खिलाफ, वो डोडो को जो सिर्फ बहरा है।
उसे मंद बुद्धि घोषित कर देता है।
जी, और उसे पेनहर्स्ट नाम के एक सरकारी संस्थान में भेजना चाहता है।
पेनहर्स्ट, उस जगह का नाम सुनते ही लोगों की रूह काम जाती थी।
वो एक नर्क था जहां से कोई बच्चा शायद ही जिंदा या सही सलामत वापस आता था।
तो अब समुदाय के सामने एक सीधा सवाल था, क्या वो एक बच्चे को बचाने के लिए कानून तोड़ेंगे?
एक ऐसा कानून जो अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है।
चोना लुडलो के लिए तो इसमें कोई सवाल ही नहीं था।
बिल्कुल नहीं। जिस पल उन्हें पता चला, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फैसला कर लिया कि समुदाय डोडो को छिपाएगा,
चाहे कुछ भी हो जाए।
हाँ, मोशे डरे हुए थे, वो खतरों को समझते थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार के आगे वो झुक गए।
और नेट टिम्बलन, उनकी क्या भूमिका रही इस करुणा के षड्यंत्र में?
नेट ने अपनी सारी समझदारी और अपना नेटवर्क इस्तेमाल किया। उन्होंने चिकन हिल के अश्वेत परिवारों के बीच एक पूरा जाल बुन दिया।
डोडो को एक घर से दूसरे घर में छिपाया जाता था?
हाँ, एक तहखाने से दूसरे तहखाने में। वो हमेशा अधिकारियों से एक कदम आगे रहते थे।
मैं उस तनाव को महसूस कर सकती हूँ, एक पूरा समुदाय अपनी जान दांव पर लगाकर एक बच्चे को बचा रहा है।
और हर दरवाजे पर होने वाली दस्तक दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी।
डॉक्टर रॉबर्ट्स भी तो चुप नहीं बैठा होगा।
उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके उकसाने पर सरकारी अफसर चिकन हिल में बार बार छापे मारते थे।
दबाव बढ़ता जा रहा था,
हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ती है।
अब वो तूफान आने वाला है।
हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स, वो एक साथ कई घटनाओं का एक ऐसा बवंडर है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है।
कैसे?
एक तरफ अधिकारियों का घेरा डोडो के आसपास कसता जा रहा था, समुदाय उसे शहर से बाहर निकालने की एक आखिरी हताश कोशिश की योजना बनाता है।
लेकिन चीजें इतनी सीधी तो नहीं रही होंगी।
बिल्कुल नहीं। इसी बीच एक और अजीब घटना होती है। मलाची नाम का एक यहूदी आदमी,
हाँ,
वो एक दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन उसकी मौत अनजाने में एक भयानक बाढ़ का खतरा पैदा कर देती है।
हे भगवान, मतलब एक तरफ इंसान का बनाया संकट और दूसरी तरफ कुदरत का कहर।
और इसी उथल पुथल और धोखेबाजी के बीच डोडो पकड़ लिया जाता है।
ओ नहीं।
उसे पेनहर्स्ट भेज दिया जाता है। ये समुदाय के लिए मतलब हार का सबसे अंधेरा पल था।
उनकी सारी मेहनत, सारा जोखिम, सब पर पानी फिर गया।
ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, व्यवस्था जीत गई।
लेकिन नेट टिम्बलन,
वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो मदद के लिए एक ऐसे रहस्यमयी आदमी के पास जाते हैं जिसे सब सन ऑफ मैन कहते हैं।
एक ताकतवर और खतरनाक आदमी।
हाँ, जिसे सब डरते हैं, लेकिन नेट जानते थे कि इस वक्त सिर्फ वही मदद कर सकता है।
और फिर?
और वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो रात के अंधेरे में पेनहर्स्ट पर धावा बोल देते हैं।
उस नर्क जैसी जगह पर।
जी, और एक बेहद तनाव भरे सीन में वो डोडो को वहां से आजाद करा लेते हैं।
और ठीक उसी वक्त,
वो बाढ़ शहर पर टूट पड़ती है। पानी का सैलाब सब कुछ तबाह कर देता है, घर, सड़कें
सब बह जाते हैं।
लेकिन यही तबाही एक मौका भी बनती है। शहर में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो लोग डोडो पहेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं।
और डॉक्टर रॉबर्ट्स, उसका क्या होता है?
उसी तूफानी रात में डॉक्टर रॉबर्ट्स किसी तरह उसी पुराने कुएं में गिरकर मर जाता है, जहां 1972 में उसका कंकाल मिलता है।
और इस तरह कहानी की शुरुआत का रहस्य आखिरकार सुलझ जाता है।
जी,
यहाँ पानी का प्रतीक कितना शक्तिशाली है। वो विनाश भी लाता है और मुक्ति भी।
बिल्कुल, बाढ़ ने चिकन हिल को तबाह कर दिया, लेकिन उसी ने डोडो के भागने का रास्ता भी बनाया।
ये कुदरत की वो दोहरी ताकत है जो सब कुछ मिटा भी सकती है और नया रास्ता बना भी सकती है।
और इस तूफान के बाद जब पानी उतरता है तो पीछे जो बचता है वो एक बदली हुई दुनिया है।
एक खट्टा मीठा एहसास।
हाँ,
मतलब डोडो तो बच गया, पर चिकन हिल का क्या हुआ?
डोडो को एक नया और सुरक्षित जीवन मिल जाता है, लेकिन इस लड़ाई का बोझ चोना की सेहत पर पड़ता है और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है।
और मोशे?
दुखी मोशे शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। हेवन एंड अर्थ ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाता है।
और वो समुदाय जो एक बच्चे को बचाने के लिए खो गया था,
वो अनोखा बंधन भी धीरे धीरे टूट जाता है। यहूदी और अश्वेत समुदाय जो कभी इतने करीब थे,
वो अलग अलग हो जाते हैं।
चिकन हिल की वो आत्मा ही जैसे मर जाती है।
और डॉक्टर रॉबर्ट्स की मौत का राज, वो हमेशा के लिए उसी जमीन में दफन हो गया।
हाँ, उस रात असल में क्या हुआ था, ये एक ऐसा राज है जिसे समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए छिपा लेता है।
और यही उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राज रखना एक बोझ भी है और जिंदा रहने के लिए एक कवच भी।
ये उनकी वो अनकही कहानी है जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं होती।
मुझे नेट टिम्बलिन की एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं, एक इंसान की जान दांव पर थी, एक लड़के की।
न गोरे की, न काले की, एक इंसान की।
नस्ल, धर्म, कानून, इन सब बहसों से ऊपर ये कहानी इसी एक सीधी साधी सच्चाई पर आकर टिक जाती है।
एक इंसान को बचाने की जिम्मेदारी, और कुछ लोगों ने उसे किसी भी हद तक जाकर निभाया।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा इतिहास केवल सरकारी दस्तावेजों या बड़ी बड़ी लड़ाइयों में नहीं लिखा जाता,
बल्कि वो लोगों की अनकही यादों, चुपचाप किए गए बलिदानों और दफन कर दिए गए राजों में जिंदा रहता है।
और शायद कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए कानून अक्सर न्याय का दुश्मन होता है,
और उनकी चुप्पी उनके राज उनके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं।
और ये भी कि नफरत और भेदभाव से भरी दुनिया में करुणा और इंसानियत दिखाना शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी काम है, भले वो किसी को नजर ना आए। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।